शाम ढल चुकी थी। हवेली की लंबी लंबी गलियों में हल्की पीली रोशनी फैल गई थी। बाहर का आसमान अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। श्यामली तेज कदमों से उसी पुराने हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। इस बार उसके कदम भटके हुए नहीं थे, सीधे थे, बेचैन थे। दिल बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, सासुमा। पता नहीं कैसी होंगी, उसने मन ही मन कहा। शाम से दिखी भी नहीं। उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गईं। वो उस दरवाजे तक पहुंची और बिना सोचे रुक गई। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुईं और जैसे दिल खुद बोल पड़ा, सासुमा। इस बार आवाज पहले से साफ थी और सच्ची। उसी वक्त अंदर से तेज खांसी की आवाज आई। श्यामली का दिल जोर से धड़का। सासुमा, वो लगभग दौड़ते हुए बोली और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे का नजारा देखते ही उसका चेहरा उतर गया। रत्ना देवी बुरी तरह खांस रही थी। एक हाथ से सीना पकड़ रखा था और दूसरा हाथ टेबल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन खांसी इतनी तेज थी कि वो पानी तक नहीं पकड़ पा रही थी। अरे आप, श्यामली तुरंत उनके पास पहुंची। रुकिए, मैं हूं। उसने जल्दी से टेबल से गिलास उठाया और उनके होठों तक ले आई। धीरे धीरे प्लीज। रत्ना देवी ने कांपते हुए पानी पिया। एक एक घूंट जैसे मुश्किल से अंदर जा रहा था। श्यामली ने उनका कंधा थाम रखा था, दूसरे हाथ से उनकी पीठ हल्के हल्के सहला रही थी। बस बस, आराम से। कुछ पल बाद खांसी धीरे धीरे कम होने लगी। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली और थककर बिस्तर पर बैठ गईं। श्यामली ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। आप अकेली क्यों थीं? उसकी आवाज में अब साफ चिंता थी। किसी को बुलाया क्यों नहीं? रत्ना देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे उसे देखकर सुकून भी। तुम आ गईं, उन्होंने धीमे से कहा। ये सुनकर श्यामली का दिल भर आया। हाँ, आ गई, उसने बहुत नरमी से जवाब दिया। आपको ऐसे छोड़ देती क्या? उसने धीरे से उनके तकिए ठीक किए। आप लेट जाइए। रत्ना देवी ने बिना विरोध किए उसकी बात मान ली। वो लेट गई और श्यामली उनके पास बैठ गई। कुछ सेकंड बस खामोशी रही, फिर रत्ना देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हर बार, उन्होंने धीमे से कहा, ऐसे ही आ जाती हो जब जरूरत होती है। श्यामली की आंखें हल्की सी नम हो गईं, क्योंकि उसने धीमे से कहा, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। वो रुकी, फिर बहुत धीरे से जोड़ा, मेरी अपनी है। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उनकी आंखों में सिर्फ अपनापन था। सासुमा कहती हो मुझे, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इतना फासला क्यों रखती हो? ये सुनकर श्यामली चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, बस उसने उनका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। फासला, उसने धीरे से कहा, दिल से नहीं है। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक रिश्ता साफ महसूस हो रहा था, खून का नहीं, लेकिन उससे भी गहरा। श्यामली ने धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई अपना ही हो। अब आराम कीजिए, उसने बहुत नरमी से कहा, मैं यही हूं। रत्ना देवी ने आंखें बंद कर ली। उनकी सांसें अब पहले से शांत थीं और श्यामली वहीं बैठी रही बिना हिले, जैसे सच में उसकी सांसें अब उसी बिस्तर से जुड़ी हों। कमरे के बाहर विश्वनाथ चुपचाप खड़ा था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर की हल्की हल्की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे पानी पीजिए, श्यामली की वही नरम आवाज, वही घबराहट, वही अपनापन। उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बदल गईं। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर ली और जैसे ही अंधेरा भीतर फैला, पुरानी यादें खुद ब खुद सामने आने लगीं। वही कमरा, वही बिस्तर। माँ की तबीयत खराब थी और उसी तरह श्यामली उनके पास बैठी थी, हाथों से सिर दबा रही थी, दवा दे रही थी और बीच बीच में डांट भी रही थी। आपको खुद का ख्याल रखना नहीं आता क्या? उस वक्त वो दूर खड़ा उसे देख रहा था और आज फिर वही सीन। बस फर्क इतना था, अब वो दरवाजे के बाहर था और उनके बीच एक अनकही दूरी खड़ी थी। अंदर से रत्ना देवी की हल्की सी आवाज आई, तुम आ गई। विश्वनाथ की सांस जैसे एक पल को रुक गई। तुम आ गई, ये वही सुकून था जो सिर्फ अपने के आने से आता है। उसने धीमे से आंखें खोली। चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी थकान। अजीब है, उसने मन ही मन कहा। इतना सब होने के बाद भी उसकी नजर दरवाजे पर टिकी रही। तुम आज भी वैसे ही हो श्यामली, उसने धीमे से सांस छोड़ी और बिना अंदर गए वापस मुड़ गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट नहीं चलाई, बस धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसने दोनों हाथ जेब में डाले और हल्का सा सिर झुका लिया। तुम आज भी मेरा टेस्ट याद रखती हो, उसके होंठों से धीमे से निकला। उसे सुबह की चाय याद आई, वही स्वाद, वही अंदाज। और आज भी उसने गहरी सांस ली। माँ को उस हालत में देखकर तुम्हें बेचैनी होती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन उसने तुरंत नजरें हटा ली। क्यों? उसने खुद से पूछा। क्यों आज भी इतना ख्याल है तुम्हें हमारा? कमरे में सन्नाटा गूंजने लगा। उसके दिमाग में एक और याद उभरी, वो दिन जब सब कुछ टूट गया था। हवेली का वही हॉल, सबके सामने ऊंची आवाजें, इल्जाम, ताने। इस घर की इज्जत समझती भी हो तुम? हद पार कर दी तुमने। और बीच में श्यामली खामोश खड़ी, आंखों में चोट, लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर उसका जाना, बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े, विश्वनाथ की मुट्ठी कस गई। तुम तो उस रोज चली गई, उसने धीमे से कहा। मेरे लिए रुकना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आवाज में अब हल्की सी कड़वाहट थी। घर वालों ने थोड़ा सुनाया क्या? तुमने तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। उसने सिर उठाया, आंखों में अब दर्द साफ था। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो कुछ कदम चला, फिर रुक गया। या शायद उसने खुद को ही रोका, मैंने ही कभी साफ कहा नहीं। ये सोचते ही उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। वो बेड के किनारे बैठ गया और दोनों हाथों से सिर थाम लिया। सब कुछ इतना आसान नहीं था, उसने धीमे से कहा। उसकी सांसें भारी हो गई थी। तुम्हें रोक सकता था मैं, वो रुका, लेकिन मैंने रोका नहीं। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई, जैसे हर सच धीरे धीरे सामने आ रहा हो। और आज उसने आंखें बंद कर ली। जब तुम सामने हो तो सवाल ये है कि क्या मैं फिर से वही गलती करूंगा? उसने धीरे से सिर उठाया, नजरें खाली थी लेकिन सोच साफ। या इस बार, उसने खुद से कहा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन उसमें एक फैसला छुपा था। बाहर हवा चल रही थी पर अंदर कुछ और ही तूफान उठ चुका था, और उस तूफान का नाम था शामली।